SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
समुद्र या पर्यावरण परिवर्तन करने का मतलब अक्सर अपने मौजूदा समूह से छोटे तटीय या छोटे समुदाय में जाना होता है। सेंटर फॉर पॉपुलेशन की नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया कि 1996 और 2016 के बीच प्रवासियों ने क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि में 26% का योगदान दिया। कुछ क्षेत्रों में ये प्रवासी जनसंख्या आधे से ज्यादा वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी। समुद्र परिवर्तन कोच कैरोलिन कैमरून को कोई हैरानी नहीं कि लोग तेजी से उस ओर जा रहे हैं।
Whether they arrived 3 months ago, 10 years ago, are often moving to country areas now because house prices are more affordable and there are different work opportunities, lifestyle opportunities, and so we're increasingly seeing smaller country communities with larger percentages of people from non-English backgrounds.
ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि कोविड 19 के बीच पिछले सितंबर तिमाही में बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ पलायन हुआ। क्वींसलैंड में उसी तिमाही में 7,200 लोग पलायन करके आए, जो किसी भी अन्य राज्य और क्षेत्र से ज्यादा था। सनशाइन कोस्ट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप की रियल एस्टेट एजेंट मेलिसा स्क्रम्बी का कहना है कि विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन के शहरवासियों ने तटीय शहरों में संपत्ति के बारे में अभूतपूर्व पूछताछ की।
I think a lot of people have realized that they can work remotely or they just want lifestyle and they've been planning on it for years and COVID made them make the decision to do it.
ऑस्ट्रेलियन कोस्टल काउंसिल एसोसिएशन की 2005 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि समुद्र या पर्यावरण बदलने वाले लोगों का पांचवा हिस्सा 2 साल के भीतर शहर वापस चला गया। कैरोलिन कैमरून का मानना है कि अगर आप पहले ही गहन शोध कर लें तो जगह बदलने में गलती की संभावना कम रहेगी। ये सच है कि कोविड 19 की वजह से आपकी स्थानांतरण की जगह देखना शायद संभव ना हो, लेकिन आप अन्य माध्यमों से जुड़कर समुदाय के लोगों के स्वभाव का पता लगा सकते हैं।
For example, you might pick up the phone and talk to customer service at the local council or speak to the visitor information center and say, look, we're thinking of moving to your community and we'd love to chat to some local people who know a lot about it. Who would you recommend that I call?
नए निवासी जो अंग्रेजी में कुशल नहीं हैं या जो विशेष आस्था में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो सुझाव देती हैं कि वो ऐसे समुदाय की तलाश करें जो आपकी संस्कृति को समझते और साझा करते हैं।
So if English is really not strong for you and you don't feel confident, I would definitely be looking for a community where there are people who speak your language and understand your cultural background.
मूर्तिकार डॉक्टर फरवरदीन दलेरी बहाई आस्था में विश्वास रखने वाले एक पूर्व ईरानी शरणार्थी हैं। भारत मेलबर्न और तस्मानिया में एक लंबी और क्षणिक प्रवास यात्रा के बाद वो टाउन्सविल में बसने के बाद बेहद खुश हैं। अब वो अपने समुदाय में नए लोगों को जोड़ने में मदद करने के लिए टाउन्सविल इंटरकल्चरल सेंटर चलाते हैं। डॉक्टर दलेरी कहते हैं कि अब सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि के लोगों के लिए छोटे शहरों में जाना अच्छा समय है।
Australia has got so much to offer. We've got the best of the world in our backyard, unique communities and also recreational opportunities that can basically enrich life of people, particularly when we are going towards slowing down, doing less work and also retirement.
अपने ऑस्ट्रेलियाई जीवन के शुरुआती चरण में 2 साल तक मेलबर्न में रहने के बाद डॉक्टर दलेरी मानते हैं कि छोटे समुदाय में घुलना मिलना आसान है।
Settlement in these areas for someone who has lived for a while in New South Wales or Victoria is not a challenging issue because people get to know you very quickly. You get to know them. You can hear people saying, good day, how is it going? And you won't be left alone totally. Like the way in larger cities, people are isolated. I lived in Melbourne for 2 years and I couldn't get to know the names of all my neighbors.
समुद्र परिवर्तन कोच कैरोलिन कैमरून कहती हैं कि एक सफल परिवर्तन के लिए नई जगह से जुड़ाव और अपनापन महसूस करना बेहद जरूरी है और ये अक्सर नए समुदाय के साथ जुड़ने की आपकी इच्छा से शुरू होता है।
If you have reasonable English, it's just that you're not confident. One of the best ways to really settle into a new community is to actually make an effort to contribute to that community. To find things that you're interested in where you can volunteer. Isolation is very real if you don't make a conscious effort to get you out of the house.
अगर आप अपनी संस्कृति और भाषा को साझा करने वाले लोगों को नहीं ढूंढ पाते तो समान शौक और रुचियों वाले लोगों को खोजने से आप नई जगह पर जल्दी स्थापित हो पाएंगे।
If you accept people as you find them, regardless of their cultural and linguistic background, they are far more likely to accept and welcome you for yours.
रियल एस्टेट एजेंट मेलिसा स्क्रम्बी की माल्टीज ऑस्ट्रेलियाई माता पिता की दूसरी पीढ़ी ने अपने जीवन का ज्यादा समय मके में बिताया। भले ही उनका परिवार मरुचिडोर जहां वो रहती हैं, वहां से लगभग 900 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उनके माता पिता अपने स्थापित समुदाय से संबंध काटने से हिचकिचाते हैं। लेकिन हाल ही में एक यात्रा ने उनके सेवानिवृत्त माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर 40 नए दोस्त बनाए। स्क्रिम्बी एक लाइफ कोच भी हैं और वो माल्टीज ऑस्ट्रेलियन समुदाय को जोड़ने का श्रेय सोशल मीडिया के माध्यम, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने और सामूहिक समूहों में शामिल होने को भी देती हैं।
There are ways to assimilate into a community. It just takes a little bit of effort and working out what your passion is and joining those hobby groups. Just start attending events and you do have to put yourself out there. It is brave having new conversations with people, but certainly the rewards are there if you have the courage to do that.
SBS Hindi, हमारी कहानियाँ Facebook पर।